قل كه دیجئے کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، کہہ دیئے کافی ہے اللہ گواہ میرے اور تمہارے درمیان، گواہ اس بات کے کہ جو تم انکار کر گئے ہو اس کے اوپر اللہ گواہ ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، جو تم میری مخالفت کر رہے ہو اس کے اوپر اللہ دیکھ رہا ہے، میرے تو پیغمبر، میری نبوت، میری رسالت کے اوپر بھی اللہ گواہ ہے اور تمہارے انکار کے اوپر بھی اللہ گواہ ہے، جو تم ریاکشن دے رہے ہو اس پہ اللہ جانتا ہے، دیکھ رہا ہے۔ انہو کہنا بھی عبادی خبیرم بصیرہ، ہو تو اپنے بندوں کے ہر فعل سے، ہر عمل سے، ہر سوچ سے، ہر بات سے باخبر بھی اور خود دیکھنے والا ہے۔ وہ تمہارے سارے انکار اور تمہاری ساری یہ کہ کیوں یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ دکھاؤ موزہ، یہ دکھاؤ موزہ، اصل میں بات یہ تھی کہ انکار ہے نا اندر، ماننا نہیں ہے، یہ بات ہے۔ اس کی وجہ سے انسان یہ بہانے ہیں کہ یہ دکھا دو، وہ موجزہ دکھا دو، ایسے کر دو۔ وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي، جس کو اللہ ہدایت دے دے وہی ہدایت پانے والا ہے، وَمَنْ يُضْلِلْ، اور جس کو وہ گمراہ کر دے، فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي، تو وہ اپنے لیے کوئی مددگار نہیں پائے گا اللہ کے سوا۔ دیکھیں اب یہ بات اہم بات ہے کہ جس کو اللہ ہدایت دے دے وہ ہدایت پانے والا ہے، جس کو گمراہی کا اللہ تعالیٰ فیصلہ کر لے، اس کو گمراہ کر دے، تو لوگوں میں سے پھر اس کے لیے کوئی کارساز نہیں ہے، کوئی ہدایت نہیں اس کو دے سکتا۔ کیا مطلب ہے کہ اللہ جس کو گمراہ کر دے، اب یہ ہدایت دے دے وہ ہدایت پانے والا ہے، یہ تو ہمیں سمجھ آ جاتی ہے، جس کو گمراہ کر دے اس کے اوپر بڑا یہ اعتراضات ہوتے ہیں، دیکھو اللہ نہیں گمراہ کر دیا، نہیں، یعنی مطلب کیا ہے اس کا کہ اللہ تعالیٰ پکڑ کے زبردستی ہدایت کے راستے پہ نہیں لے کر آئے گا، جدھر کو کوئی جانا چاہتا ہے، اگر گمراہی کو کوئی چوز کرتا ہے، اما شاکرم و اما کفورا وہدیناہ النجدین، یہ ساری باتیں بتاتی ہیں اللہ تعالیٰ نے دونوں راستے دکھا دیے، چاہے انسان شکر گزار ہو، نہ شکر ہو، کفر کرے، ایمان لائے، اللہ تعالیٰ زبردستی نہیں لائے گا، اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے اس دنیا کے لیے کہ اس نے فری ویل دی ہے انسان کو، چوائس دی ہے انسان کو، وہ اپنے لیے خود پسند کرے کہ میں نے کون سا راستہ اختیار کرنا۔ دکھا دیا اللہ نے، ہدایت بھی دکھا دی، گمراہی بھی دکھا دی، لیکن کوئی گمراہی کو خود پسند کرتا ہے نا، گناہوں کی زندگی خود گزارنا چاہتا ہے، نافرمانی پہ ہی چلنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا راستہ کھلا رکھا ہوا ہے، وہ خود ہی نہیں آنا چاہتا، تو اللہ تعالیٰ بازو پکڑ کے زبردستی نہیں لے کر آئے گا، ورنہ تو رائٹ آف چوائس ہی ختم ہو گیا۔ انسان برائی کے راستے پہ جانا چاہتا ہے، کہتا ہے میں آزاد ہوں، میری مرضی ہے، میں ادھر ہی جانا چاہتا ہوں، اللہ زبردستی نہیں کرے گا اس کے ساتھ، ورنہ وہ کہہ دے گا پھر کیا میری رائٹ آف چوائس ہوا اگر میرے ساتھ زبردستی کی جانی ہے۔ لوگ آج بھی کہتے ہیں نا کہ زبردستی نہیں آپ کر سکتے، زبردستی اس کو مسلمان نہیں کر سکتے، واقعی نہیں کر سکتے، نہ تلوار کے زور پہ کبھی کیا گیا، کسی کو مسلمان نہیں، ہمارے دین میں ہے ہی نہیں ایسی کہ زبردستی کرنا ہو تو اللہ تعالیٰ خود نہ کسی کو پکڑ کے ساروں کو مسلمان کر دے اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا کہ اس نے فری چوائس دی ہے انسان، اس کی ول ہے، زبردستی کرانی ہوتی تو اللہ تعالیٰ سے زیادہ کون زبردستی کرا سکتا تھا، تو اس لیے ہمارا کام نہیں ہے زبردستی لوگوں کو اسلام میں لانا، یہ تو بالکل جو لوگ کہتے ہیں وہ غلط کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پہ اترا، یعنی تلوار کی نوک پہ لوگوں کی گردنوں کو رکھ دیا اور پھر ان کو کہا اب تم کلمہ پڑھ لو، ایسا کبھی نہیں، ہمارے دین میں ہے ہی نہیں ہے، یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے، یہ الاؤڈ ہی نہیں ہے ہمیں، کیونکہ اگر اس طرح ایمان لانا ہوتا تو پھر ہمیں نہ کہا جاتا، ہماری کیا ضرورت تھی، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اتار دیتا، دیکھے تو یہاں پہ سارے ٹھیک ہو جاتے، سیدھا کر دیتے وہ سب کو، تو لیکن اللہ تعالیٰ یہی تو چاہتا ہے کہ انسان اپنے دل سے، اپنی مرضی سے، اپنی رضامندی سے، اپنی خوشی سے اللہ کی طرف آئے، زبردستی کرنے کو تو دیکھو جیسے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، اسی طرح اللہ تعالیٰ انسان کو بنا دیتا، وہ دیکھیں کر ہی رہے ہیں نا کام مشینوں کی طرح، انسان بھی ایسے ہو جاتا، اللہ تعالیٰ نے خود اس کو چوائس دی، تم جاؤ تم جس راستے پہ چلنا چاہتے ہو، اب جو اپنی مرضی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے آگے بچ جائے گا، جھک جائے گا، अपनी इस फ्री विल को छोड़ देगा कि अल्लाह तूने मुझे आजादी दी है, मैंने ये आजादी नहीं लेनी, मैं तो वही करूंगा जो तू कहेगा, तेरा हुक्म मेरी सर आंखों पे, मेरा सर झुका हुआ, मैंने अपनी मर्जी से अपनी आजादी दे दी, मैं तेरी गुलामी में आना चाहता हूं। ये है जो अल्लाह ताला को मतलूब है, ये है जो अल्लाह का प्यारा बंदा है। तो जबरदस्ती अल्लाह ने नहीं कराने, ये है अल्लाह को पसंद, खुद से आता है, समझ के आता है। तो जो भटकना चाहता है उसको हिदायत नहीं मिलेगी। फिर उसको अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि जो भटकना चाहता है फिर वो अपने लिए कोई वली नहीं पाएगा, अपने लिए कोई औलिया नहीं पाएगा, कोई मददगार नहीं पाएगा, यानी उसको फिर कोई भी, चाहे कोई नबी, चाहे कोई आलिम का, चाहे कोई दीन का दाई, कोई भी उसको तबलीग कर दे, वो जिसने इरादा कर लिया ना कि मैंने नहीं मानना, तो अब उसके सामने कितनी भी दलीलें ले आए कोई उसको फिर हिदायत नहीं दे सकता, उसका दिल कोई नहीं बदल सकता अल्लाह के सिवा। और ये बहुत डेंजरस मुकाम है, कोई इंसान बस कह दे कि मैंने नहीं मानना। हाँ, जो समझता है कि हाँ मैं दलील से बात की जाए, दलील को समझता है, फिर इस तरफ को आता है, वो फिर हिदायत पा सकता है। लेकिन जो ये ठान ले मैंने मानना ही नहीं, कोई जितना मर्जी समझा लो, उसको कौन हिदायत दे सकता है? तो ऐसे लोगों का क्या हशर होगा? व नहशुरु हुम यौमल कियामति अला वुजूहिहिम उम्यम व बुकमन व सुम्मन। सुमन बुकमन उमियन पहले पढ़ा है ना, उसी को उसकी तरतीब डिफरेंट करके, अंधा गूंगा और बहरा। वो कयामत के दिन अपने मुंहों पे अंधे गूंगे बहरे बना के इकट्ठे किए जाएंगे। अच्छा, ये क्यों अंधे गूंगे बहरे बना के क्यों, और उल्टे मुंह पे होने का मतलब क्या है? सर नीचे और पैर ऊपर। देखा है आपने कभी कभी कोई दीवार के साथ ऐसे करके खड़ा हो जाता है, सर नीचे और पैर ऊपर करके, ये उनका हाल होगा। क्यों ऐसा, ऐसी सजा क्यों? मैंने आपको जैसे बताया था कि जो इंसान का अमल इस दुनिया में होता है ना, उसी की किस्म की सजा उसको कयामत के अंदर दी जाएगी, जैसा जुर्म वैसी सजा। ये लोग जो थे हक को देख के अंधे, हक की बात सुनने से बहरे, हक बोलने से गूंगे थे, यानी अल्लाह का कलाम इनके आगे आ गया, इन्होंने ऐसे करा जैसे ये अंधे हैं, इन्होंने ऐसे किया जैसे ये गूंगे बहरे हैं, ना सुनना चाहते थे, ना देखना चाहते थे, ना पढ़ना चाहते थे, खुद भी नहीं पढ़ना, दूसरे से भी नहीं सुनना, ऐसे लगता था कि जैसे कोई बोझ है इनके ऊपर जो आ गया। उन्होंने अपनी सारी जिंदगी और कामों में गुजार दी, लेकिन इस तरफ को नहीं आए। कोई बुलाए भी तो देखे, बुलाने के अगर कोई सुनेगा तो फिर ही कोई बुला सकता है ना, कोई बुलाए तो ऐसे कर देना जैसे सुना ही नहीं, खुद तो पढ़ना ही नहीं है, खुद जानने की कोशिश ही नहीं करनी कि अपनी आंखें यूज कर लें। तो इन्होंने अपनी ये फैकल्टीज यूज नहीं की, अल्लाह ताला ने ये कान आंख जुबान ये इसलिए दिए कि इंसान हक को पहचाने, अल्लाह ताला की बात को समझे, जाने फिर रब ने क्या हुक्म दिया है। लेकिन अगर इंसान ने सारी जिंदगी इन अपनी सलाहियतों को हक बात सुनने समझने देखने में यूज नहीं किया, तो कयामत के दिन फिर जैसे दुनिया में तुम स्पिरिचुअली ऐसे रहे, कयामत के दिन फिजिकली अल्लाह ताला ऐसा कर देगा। तुमने आंखें बंद की थी ना दुनिया में, ऐसे नहीं कि आंखें आप फिजिकली बंद करें, लेकिन कुरान है, नहीं पढ़ना, नहीं समझना, दीन की कोई मजलिस के लिए बुलाता है नहीं जाना, अगर चले भी गए तो इतनी देर से गए ताकि कोई बात हमारे कानों में ना पड़े, और अगर कभी ऐसा हो ही गया कि पहुंच गए हैं और अभी तक कोई अल्लाह की बात कही जा रही है, तो अब क्या करें? फिर कहीं कानों में पड़ ना जाए। उठ के इधर उधर हो गए, खिसक गए, कभी किचन में बिजी हो गए, कभी कहीं और चले गए। जब सारी बात खत्म हो गई, अल्लाह ताला की बातें खत्म हो गई, दर्स खत्म हो गया, कुरान की दावत खत्म हो गई, तो फिर कहीं से नमूदार हो गए, फिर लोगों के साथ गपशप शुरू कर दी। इतना ज्यादा अवॉइड करना अल्लाह की बात को, कि ना खुद पढ़ना, ना कानों में पढ़ने देना, ना किसी से जुबान से बोल के पूछ लेना। एक बंदा होता है कि भाई नहीं, उसको तो खुद नहीं पढ़ सकता, वो पूछ ही लेता किसी से, भाई मेरी हेल्प करो। तो ऐसे बंदा हिदायत कैसे पा सकता है जो कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं, समझने को तैयार ही नहीं, देखने को तैयार ही नहीं? तो इसलिए ऐसे लोगों का अंजाम ये होगा। आज कितने जराए हैं, चलो एक दर्स को छोड़ें, आज कितने जराए हैं, आप सबके पास फोन है, उसमें भी कोई अल्लाह ताला का जिक्र आ जाता है, कोई तिलावत आ जाती है, टीवी पे कभी तिलावत लग जाती है, कोई मैसेज भेज देता है। लेकिन अगर किसी ने कोई बात समझनी ही नहीं है, कोई वीडियो भेज देता है उसको खोलना ही नहीं, कोई मैसेज आया तो उसको पढ़ना ही नहीं, जो ही देख लिया ना ये मैसेज कोई दीन का मैसेज है उसको पढ़ना ही नहीं, कैसे हिदायत मिलेगी? और फिर हम समझते हैं कि हम सबसे ज्यादा हिदायत याफ्ता है, हमसे ज्यादा तो हिदायत किसी के पास है ही नहीं। अल्लाह ताला ने ये कान, आंखें, जुबान, ये सब चीजें ठीक है, आप अपनी जरूरियात पूरी करें, अल्लाह ताला ने इसलिए दी हैं, लेकिन असल इनका मकसद ये है कि इनसे रब को पहचान लो। ये है सोर्सेस जो दिमाग तक मैसेज को लेकर जाते हैं, जो देखेंगे वो दिमाग तक पहुंचेगा ना, जो सुनेंगे वो दिमाग तक पहुंचे। आपने उन्हीं को बंद कर दिया, इन डोर्स को बंद कर दिया, गेटवेज है दिमाग तक पहुंचने के, समझने के। अब इन गेट्स को ही बंद कर देगा कोई इंसान तो कैसे समझेगा, कैसे पाएगा रब को, की पहचान कैसे आएगी, हिदायत कैसे मिलेगी? तो जब इसने इनसे काम नहीं लिया तो ठीक है, अल्लाह ताला भी जब उनको उठाएगा तो ऐसे उठाएगा कि अंधे गूंगे बहरे होंगे। यही वो जुबानें थी जो हर वक्त कुछ ना कुछ बोल रही होती थी लेकिन अल्लाह की बात नहीं बोलती थी। यही वो आंखें थी जिनसे दुनिया जहान को देखा, सैरें की, हर चीज पढ़ी, पढ़ाइयां की, सब कुछ पढ़ा, किताबें भी पढ़ी और भी बहुत कुछ देखा, मगर एक अल्लाह के कलाम को नहीं देखा। यही जो कान थे जो सारी बातें सुनते थे, म्यूजिक भी सुना और दुनिया जहान की और चीजें भी सुनी, हर किस्म की कमेंट्री, हर किस्म के लेक्चर्स इधर उधर सुने, मगर एक अल्लाह की बात की तरफ नहीं आए, उसको नहीं सुनना, तो अब क्या है, अंधे गूंगे बहरे हैं। और कयामत के दिन कैसे उठेंगे? एक आदमी ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कयामत के दिन कैसे किसी को मुंह के बल चलाया जाएगा? आप सरम ने फरमाया ना कि भी ये इस तरह से ऊंधे मुंह चलेंगे। जहन में आता है ना कि एक तो हम पैरों के साथ चलते हैं, तो सर नीचे और पैर ऊपर हो तो चलेगा कैसे इंसान? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस जात ने दुनिया में दो पैरों के ऊपर चलाया, वो कयामत के दिन उसके मुंह के बल चलाने पे भी कादिर है ना? तो जो अल्लाह पैरों के बल चला सकता है तो मुंह के बल क्यों नहीं चला सकता? सोचे कितनी बड़ी जिल्लत होगी उसकी, कैसे मुंह के बल चलता जा रहा होगा, ऐसा क्यों? इसलिए कि अल्लाह ताला ने इतनी जिंदगी दी थी, मोहलत दी थी, वक्त दिया था, कोई 15-20 साल नहीं रहे जिंदगी के अंदर, बड़ा वक्त था, लेकिन हर जगह अपनी सलाहियतें इस्तेमाल की, इस तरफ नहीं की। ठीक है चलो, एक इंसान 20-22 साल का होता है, उसके हार्मोन्स जो होते हैं वो बड़े छड़े हुए होते हैं, तो इतनी नहीं समझ होती, लेकिन उसके बाद क्या कभी भी नहीं कोई वक्त आया जिसमें हिदायत पाने के लिए कोई स्टेप उठाते? समझे सारी थी, हर तरह की समझ थी। मैं देखती हूँ लोगों को इतने इतने अक्लमंद होते हैं, इतनी समझदारी की बातें कर रहे होते हैं, लाइन को कितना नॉलेज, कितना हर एक टॉपिक पे बोल रहे हैं, लेकिन अगर दीन की बात आ जाएगी तो बिल्कुल कोरे, इधर की उधर, उसमें भी वो समझते हैं हम बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन इधर की उधर मारेंगे, उधर की उधर मारेंगे, समझ आ जाती है कि दीन के मामले में बिल्कुल ही सफाया है। तो जिंदगी की कितनी बाहरें देखता है इंसान, 30 का होता है, 40 का होता है, 50 का होता है, क्या कभी फुर्सत नहीं मिली? गिने के 50 साल में कितने दिन होते हैं, कितने महीने होते हैं, कितने घंटे होते हैं? कोई घंटा भी नहीं था जो अल्लाह के लिए हो, कोई दिन भी नहीं थे मिले। 60 साल के हो जाएं तो फिर तो इंसान को बिल्कुल होश पकड़ लेना चाहिए, क्योंकि 60 साल के बाद तो अल्लाह ताला के यहाँ कोई उजर जो होगा उसका, कोई एक्सक्यूज जो होगा एक्सेप्टेबल नहीं होगा। मगर 70-80 साल के भी हो जाते हैं फिर भी यही हाल होता, और इसी हाल के अंदर लोग देखते हैं कि क्लब्स भी ज्वाइन किए हुए हैं, किटी पार्टीज भी हो रही हैं, अपने शौक भी पूरे किए जा रहे हैं, और बाज दफा तो लोग बड़े खुश होके कहते हैं बहुत लाइवली हैं ये आंटी, बहुत लाइवली हैं, ऐसा होना चाहिए, बहुत जिंदा दिल है। क्या जिंदा दिली है ये? आप जिए जरूर, खुश भी रहें, अपने सेहत भी की भी फिक्र रखें, सब कुछ करें, लेकिन ऐसे नहीं कि सारी चीजों को एंजॉय कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, एक अल्लाह ताला का ख्याल नहीं जिसकी तरफ वापस लौटना, एक उसी तरफ ध्यान नहीं है, और जितना इससे दूर है उतने ही लाइवली समझे जाते हैं, उतने ही जिंदा दिल है, तो बस सारी चीजों का और होश है, जो जवानी में करते थे वो ही बुढ़ापे तक, वो ही शौक पूरे नहीं हो रहे अभी तक, और अभी तक भी अल्लाह ताला की तरफ ध्यान नहीं है, अभी तक भी तौबा की तरफ की तौफीक नहीं मिली। तो किसकी उम्र में भी पहुंच जाए, कभी भी ये ना सोचे कि वापसी का रास्ता नहीं है, अभी भी इंसान सोचे कि जिस उम्र में भी मैं हूं, मुझे अल्लाह ताला ने ये नहीं कहना कि अब आधी उम्र गुजार दी, अब आ गई हो, अभी भी अगर होश आ जाता है तो हिदायत की तरफ आ जाए। वाहम जहन्नम, मगर जो लोग सारी जिंदगी इन्हीं कामों में पड़े रहते हैं, हिदायत का कोशिश ही नहीं करते कि कभी उनको हिदायत मिल जाए, कभी उनको ये रास्ता मिल जाए, तो क्या है उनका ठिकाना? फिर जहन्नम है। कुल्लमा खबत जिदना हम साइरा, जब कभी आहिस्ता होने लगेगी उसकी आग ज्यादा कर देंगे हम उनको भड़काने में, वो और ज्यादा, ऐसा नहीं होगा कि जहन्नम की आग जल जल के, एक दिन चलो कोयले भी जल जल के ठंडे हो जाते हैं, आप बारबेक्यू करते हैं उसकी भी आग फिर जल जल के, तो जब तक आप उसको फ्यूल ना करते रहें तो वो तो खत्म हो जाती है, तो ऐसा नहीं है कि जहन्नम की आग जल जल के पता नहीं कब से जल रही है, अब तो खत्म हो ही जाएगी, नहीं, जब कभी धीमी होने लगेगी उसको और भड़का दिया जाएगा, कम तो कभी होगी नहीं। तो हिदायत इतनी बड़ी जरूरत है, हिदायत इतनी बड़ा खजाना है कि इंसान इसके बगैर सोचे उसका हाशर क्या है, कि मुंह के बल घसीटा जाना और सुमन बुकमन उमियन करके उठाया जाना। फिर भी लोग अगर आज तक ये ना समझे कि कोई हिदायत की हमें जरूरत है, हम तो खुद ही हिदायत याफ्ता हैं जी, पैदाइश ही हिदायत याफ्ता, हम पैदा ही हिदायत पे होते, कुरान की क्या जरूरत थी फिर, क्या जरूरत थी सोचे ना, अगर हम सारे इतने अकलमंद थे, हम इतने समझदार थे, हम पैदा होते से ही समझदार हैं, क्या नहीं हमें पता, फिर कुरान की तो जरूरत थी ही नहीं, क्या जरूरत थी फरिश्ता भेजने की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, इतना कुछ बर्दाश्त करने की, इस पैगाम को आगे पहुंचाने के लिए क्या जरूरत थी? पढ़े पढ़ाए हम उतरे हैं और सब कुछ हमें आता है, हमें खुद समझ है, तो आज बहुत कम लोग महसूस करते हैं कि उनको हिदायत की जरूरत है। तो पहले तो ये मानने की जरूरत है कि मुझे हिदायत चाहिए, अल्लाह मुझे हिदायत अता फरमा, और इसीलिए अल्लाह ताला ने सूरह फातिहा में हमें ये सिखा दिया कि तुम कहा करो कि अल्लाह मुझे हिदायत दे दे सीधे रास्ते की, कहा करो, मांगा करो अपने लिए। अगर नहीं जरूरत थी, अगर अकलमंद थे हम इतने, तो क्या जरूरत थी ये कहलवाने की, ये हमारे रगत में ये कहते फिरते। हम बैग करते हैं अल्लाह ताला से, कितनी दफा बैग करते हैं दिन में। कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन जो नमाज के बगैर हो, तो कोई दिन ऐसा नहीं है जो हिदायत की दुआ के बगैर हो। चाहे और कोई दुआ मांगे ना मांगे, लेकिन जो भी नमाज पढ़ने वाला है वो ये दुआ मांगता है। इसका मतलब हमें जरूरत है, और बल्कि जरूरत ही नहीं, सबसे बड़ी हमारी जरूरत है कि हमें हिदायत मिल जाए। हिदायत के बगैर जिंदगी क्या है? अंधी जिंदगी है, इसकी बेसमत जिंदगी है, को डायरेक्शन लेस जिंदगी। लेकिन दुख इसकी बात यह है कि फिर भी बहुत सारे लोगों को आज भी ये बात समझानी पड़ती है कि भाई आपको हिदायत की जरूरत है। हर कोई समझता है कि मुझे कोई जरूरत नहीं हिदायत की, मैं हिदायत याफ्ता हूं। अल्लाह अकबर। तो अगर जरूरत ही नहीं महसूस करेंगे तो फिर हिदायत पाएंगे कहाँ से? फिर उसकी तलाश कैसे करेंगे? फिर उसके लिए कोशिश कैसे करेंगे? फिर उसके लिए वक्त कैसे निकालेंगे? जिसको जो समझता ही नहीं कि मुझे जरूरत है, क्यों आएगा फिर वो इस तरह? जालिका जजा ओहम भी अन्नम कफरू भी आयातिना, ये इनकी जजा है कि बेवजह इसके कि बेशक उन्होंने हमारी आयात का इनकार कर दिया था, हमारी आयात को नहीं माना। और कौन सी आयात को नहीं माना? ना कुरान की आयात को माना, ना इनको समझा, ना इनको अपनी जरूरत जाना, ना कायनात की आयात को देखकर कुछ अल्लाह ताला को पहचाना। आयात तो बिखरी पड़ी है, कुरानी आयात भी इसमें है और कायनात की और अनफुस की आयात भी। अपने नफ्सों में ही झांक के देख लो, अपनी जानों में ही तुम देख लो, उसके अंदर इतनी निशानियां है, सुभान अल्लाह। तो ऐसे लोगों ने कहीं भी नहीं गौर किया। वकालू जदीदा, और उल्टा क्वेश्चन करने लगे लो भला हम जब क्या हड्डियां और रेजा रेजा हो जाएंगे, दोबारा भला हमें नहीं तखलीक करके खड़ा किया जाएगा? कैसे हो सकता है अल्लाह हमें खड़ा कर दे जब हम ऐसे चूरा चूरा हो जाए, हमारी जिसम भी हमारे चूरा चूरा हो जाए? तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, क्यों नहीं? अवलम यरून अल्लाह अल्लज़ी खलक़ अस्समावाति वल अर्ध क़ादिरुन अला अन यख़लुक़ मिस्लहुम, क्या वो अल्लाह कादिर नहीं है कि इनको पैदा करे, इन जैसों को पैदा करे? वो अल्लाह जिसने आसमानों को और जमीन को पैदा कर दिया, इतनी बड़ी कायनात। आसमानों जब कहा जाता है ना, तो इसमें ये सारी कायनात आ जाती है, ये सारा यूनिवर्स आ जाता है इसके अंदर जब आप आसमानों कहते हैं। आसमान सिर्फ ये आसमान नहीं जो नीला आसमान आप देख रहे हैं, ये सात आसमान है। और अब तो साइंस ने जितना कुछ देखा है, कलील कलील इल्म जो हमारे पास है, उस पे भी इंसान की अकल दंग रह गई है, दंग रह गई है, हैरान है, परेशान है साइंसदान कि ये कायनात कितनी बड़ी है। इतनी बड़ी कायनात, इतनी सी जमीन हमारी, इस जमीन पे कितना कुछ है, कितना कुछ है। आप समंदर देख लें, दरख्त देख लें, मछलियां देख लें, चरिंद परिंद देख लें, हैवानात देख लें, इंसान देख लें, कितना कुछ है जमीन के ऊपर। वो सारा कुछ मिला के ये आप ही की एक जमीन बनती है, जो कि एक जमीन है इस सोलर सिस्टम में, इस निजामे शमसी में एक जमीन है। इस तरह के कई निजामे शमसी मिला के एक गैलेक्सी बनती है, वो कई गैलेक्सीज मिला के एक क्लस्टर बनता है। और पता नहीं कहाँ कहाँ तक फैली हुई है ये कायनात, कितनी इसके अंदर कहकशाएं, कितने इसके अंदर सितारे सैयारे हैं कि वो कहते हैं ट्रिलियंस ट्रिलियंस। साइंसदान कहते हैं हम गिनती नहीं कर सकते, ट्रिलियन ट्रिलियन कह के उन्होंने अपनी, अब उससे ज्यादा क्या गिनती तो इंसानों की भी खत्म हो जाती है। गिनती तो इंसानों की एक लिमिट है ना, गिनती की भी बेचारे क्या करें। इतना कुछ जिस रब ने बना लिया, अंतुम अशद्दु खल्कन अमिस समा, क्या तुम ज्यादा मुश्किल हो, ज्यादा शदीद हो तखलीक में, पैदा करने में, या आसमान? अल्लाह ने उनको बना लिया तो तुम ही नहीं बना सकता। वजाल लहुम अजल ला रोइबा फी, और उसने मुकरर कर दिया एक वक्त जिसमें कोई शक नहीं, हमेशा के लिए नहीं बना दिया सब कुछ, एक वक्त मुकरर है इसमें सब खत्म हो जाना, एक मुय्यन मुद्दत तक के लिए बनाया, बस इतनी तक ये कायनात है, ऐसा वक्त मुकर्रर है जिसमें कोई शक नहीं। वो अजल कौन सी है, इंसान की मौत भी हो सकती है और कयामत का वक्त भी हो सकता है जिसमें कोई शक नहीं। तो क्या अल्लाह ताला के लिए कोई चीज मुश्किल है? कुछ भी मुश्किल नहीं। एक वीडियो थी जिसके अंदर उन्होंने ऐसे दिखाया, सुभान अल्लाह, एक आंख से शुरू किया, आंख के अंदर की पुतली से शुरू करके फिर वो ऊपर 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 ले जाते गए हैं, जैसे बनाई भी है ना, जैसे फिर जमीन को दिखाया, फिर सितारों सैयारों, फिर ऊपर कायनात के अंदर चले गए, फिर नीचे को आए कि कितनी छोटी चीज एक इंसान की आंख और फिर कितनी बड़ी ये कायनात। तो इंसान हैरान हो जाता है, उसकी अकल जो है ना इंसान की कॉम्प्रेहेंड नहीं कर सकती, क्योंकि अकल भी बेचारी महदूद है ना। वो समझते तो हम अपने आप को बहुत बड़ी चीज है कि इंसान है तो पता नहीं हम क्या हैं, हमारी अकलों के जैसा तो कोई है नहीं, लेकिन फिर भी महदूद है, लिमिटेड है। तो उसको समझ ही नहीं आता कि ये कैसे बनाया, क्योंकि वो अपने जैसा समझता है ना, कि हम सोचेंगे चूरा चूरा हो जाए, कोई अल्लाह माफ करे जहाज क्रैश हो जाता है तो इंसानों के अज़ा कहाँ कहाँ बिखर जाते हैं और रुल जाते हैं और मिलते ही नहीं है कि किधर, ना ये समझ आती किसका कौन सा। तो हम ये सोचते हैं कि जो हमारे लिए मुश्किल है तो फिर कहाँ, ये इस तरह जब चूरा चूरा हो जाएंगी हड्डियां तो फिर कैसे होगा। तो ये जो मुश्किल है ये हमारे लिए मुश्किल है, क्योंकि हमारी ताकत लिमिटेड है, हम महदूद है। अल्लाह ताला के लिए मुश्किल नहीं, क्योंकि वो आला कुल्ली शैइन कदीर है। आज भी बास लोग इस किस्म के शोशे निकालती हैं, इस किस्म के लोग हैं जो ऐसी बातें निकाल के स्टैंड आउट करना चाहते हैं कि जी हमने देखो कितना वो निकाला, देखो जी कैसे ऐसे हो सकता है, देखो जी मैंने कितना अच्छा पॉइंट निकाला कुरान से, इस तरह हो कैसे सकता है। ऐसी सी बातें हैं, ऐसी सी फजूल चीजें इसमें से निकालते हैं, जैसे वो लोग एतराज करते हैं जी कैसे हो जाएगा, ये कैसे हो सकता है। तो कहीं ऐसी कोई बातें हो ना तो उनको ना पढ़े भी नहीं, उनको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, आगे फैलाने की जरूरत नहीं। जैसे इन्होंने सोचा छोड़ा ना, इस तरह इनके सोचे हैं, आज इंटरनेट पे कितने बिखरे पड़े। अगर कोई कोई कार्टून बना लेता है तो देखने की जरूरत नहीं है कि मैं जरा खोल के देखूं, इसलिए कि ये लोग जो है ये इन्हीं चीजों पे थ्राइव करते हैं, ये चाहते हैं कि हमें शोहरत मिले। इस तरह जितने लोग सर्च करेंगे वो उतने ही ज्यादा उनकी सर्च जितनी बढ़ेगी जाहिर है उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, उतनी वो उनको इससे फायदा होगा, कभी उनको पैसे मिलते हैं, कभी और चीजें होती हैं, उनका उनको शोहरत मिलती है, यही चाहते हैं वो। तो ऐसी चीजों को जो ऐसे शकों को शुभार डालें, कैसे करेगा, कैसे अल्लाह ताला ऐसे करेगा, वो तो चूरा चूरा वाकई, अगर आप हाथ में ऐसे मट्टी रख के देखें, अल्लाह जाने इसके अंदर, इस मट्टी के अंदर किस कितने जानदारों के जर्रे हों या किसी इंसान के जर्रे हों उसकी बॉडी के, हमें क्या पता। तो अब हम सोचते हैं हाँ वाकई पता नहीं ऐसा कैसे हो सकता। तो ये चीजों को ना ऐसे लोग ऐसी चीजों से शकों को शुभार डालते हैं, सिर्फ ये बात नहीं है और भी कई बातें। अभी पिछले दिनों एक स्टूडेंट ने लिखा कि वो यानी जो भी इंडिया में हो रहा था तो उसके ऊपर जो कमेंट्स थे वो उन्होंने जब पढ़े तो वो कहने लगी कि ऐसे ऐसे लोगों ने कमेंट्स दिए हुए थे कि आप तो जंगे भी नहीं है, तो जंग की आयात क्यों है कुरान में, और क्यों ऐसे कहा गया कि इनको मारो या कैसे। तो वो ऐसी बातें पढ़ के कहने लगी कि मेरा खुद ही हाल हो गया कि मेरा ईमान लो हो गया, कि मेरे दिल में शकों को शुभात आने लगे तो मुझे बचाएं। तो देखें इसी तरह एक और बता रही थी कि कोई बड़ा दीनदार आदमी था, प्रैक्टिसिंग था, तो वो मुर्तद हो गया क्योंकि इस्लाम के खिलाफ जो बातें बेहुदा और जो किस्म के फितने ये फितना परवदास बातें करते हैं और कुरान के ऊपर इतराजात और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पे करते हैं, तो जब किसी इंसान के पास खुद नॉलेज नहीं होता ना, तो वो ऐसी बातों में पढ़ के उसका अपना ईमान जा सकता है, वो मुर्तद हो गया बंदा, निजाम छोड़ दिया उसे। तो वो देखिए, ये पहले कभी ये हदीस पता नहीं इतनी लोगों को समझ आती होगी कि नहीं आती होगी, कि कैसे होगा कैसे होगा, लेकिन अब अच्छी तरह ये हदीस समझ आती है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई सुबह को मोमिन होगा, शाम को काफिर होगा, शाम को मोमिन होगा, सुबह को काफिर हो जाएगा, तो वाकई समझ आती है। कोई एक एक लहजे के लिए, एक पहर के लिए भी इंटरनेट पे बैठता है और ऐसी चीजों को सर्च करता है, तो ईमान में शकूक व शुभात पैदा करने वाले आ जाते हैं। ऐसे लोग हैं जो डाउटफुल कर देते हैं बंदे को, दिल में तरह तरह के वसवसे आने लगते हैं। शैतान तो वैसे ही पीछे लगा, वो खुद इल्म है नहीं। तो ये भी इंसानों की सूरत में शैतान बैठे हुए इंटरनेट पे, जिनका मकसद ही है कि बस लोगों के अंदर ना, जब आपको दीन से नफरत दिलाएंगे, ऐसी बातें, डाउटफुल बातें करेंगे, खुद ब खुद एक इंसान दीन से बदजन हो जाएगा और उसे दूर होने लगे। तो मैं आपको यही कहूंगी, ऐसी चीजें ना देखें ना पढ़ें, क्यों अपने आप को खुद फितने में डालते हैं। हाँ, वो लोग जो आलिम दीन है, जिनके पास मजबूत इल्म है, वो इनको जवाब देने के लिए जरूर पढ़ सकते हैं। अदरवाइज आप खुद मुझे बताएं, टॉयलेट है, टॉयलेट फ्लश नहीं हुआ हुआ, उसके अंदर गंदगी है, तो देखना चाहती हैं आप कभी? नहीं, घिन खाते हैं आप। ये भी बातें इसी किस्म की गलीज और गंदी है। क्यों उनको सर्च करते हैं और क्यों उनको हम देखना चाहते हैं और क्यों उनको हम पढ़ना चाहते हैं कि क्या लिखा है इसने, क्या जरा मैं देखूं तो सही? क्यों? वो गंदगी है, ठीक है? तो इसलिए इन चीजों के पीछे नहीं जाना हमने। आप देख लें कि उस वक्त भी मुनाफिकीन का काम क्या होता था, वो जो कमजोर मुसलमान या कमजोर ईमान वाले होते, या भी नए नए मुसलमान हुए होते, सबका ईमान तो अबू बकर सिद्दीक और उमर वाला नहीं था, तो वो उनके दिलों में शकूक व शुभात पैदा करने के लिए ऐसी ऐसी बातें करते, को जी या तो इनके पास खाने को नहीं, कैसे और किसरा के महलों की बातें करते हैं, ऐसे हमसे तो बड़े वादे किए थे कि जी आपकी दुनिया भी चुक जाएगी, आज तो हमें इतना खतरा है कि हम अपनी जान बचाने के भी उस पे हैं, पता नहीं इस तरह की बातें करके मुसलमानों को बदजन करना। देखो किबला बदल गया, भला इनको पहले नहीं पता था कौन सा किबला रखना है, अब इन्होंने किबला बदलने की बात है। तो ये नई बातें नहीं है, हर दौर में ऐसे लोग गुजरे, मगर आज हमारे घरों में चूंकि ये नेट के थ्रू हमें सारी चीजें मालूम हो जाती हैं, और हम जिस साइट पे भी जाएं या जिन मर्जी लोगों की बेकार और बुरी बातें हम सुन भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, तो आज घर घर में ये फितना फैल रहा है, और वो अपनी आवाजें कहाँ तक पहुंचा रहे हैं। तो उनकी आवाज को हम बंद नहीं कर सकते, मगर हम उनकी बातों को ना सुन के उनसे गूंगे बहरे बने, उनसे ऐसे होंगे जैसे है ही नहीं, उनसे सुमन बुकमन उमियन हो जाए, ठीक है? हम अपने दीन के बारे में सुमन बुकमन उमियन है, और ऐसी बातें पढ़ने का बड़ा शौक रखते, देखूं तो सही इन्होंने कहा क्या, आजकल सुना है फलाने ये बात कही, क्या कही है मैं उसको देखूं। जो भी कोई कह रहा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी के बारे में, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में, कोई भी बकवास बातें कर रहे हैं, उनको नहीं सुनना हमने, ठीक है? अब अलमी और अच्छा ये बात हो गई है, फअबा ज़ालिमुना इल्ला कुफूरा, तो इनकार किया जालिमों ने मगर कुफर का, कुफर में तो आगे बढ़े मगर बाकी सब चीजों का इनकार किया, जैसे पहले आया फाबा अक्सर उन्नासी इल्ला कुफूरा, तो इनकार किया अक्सर लोगों ने मगर कुफर का। तो यहाँ पे भी ये आया कि जालिम है, इसका मतलब अक्सरियत लोगों की जालिम है, क्योंकि वहां पे कहा गया अक्सरियत लोगों की ने इनकार किया मगर कुफर का इनकार नहीं किया, बाकी सब बातों का इनकार किया, जो उनको बातें समझाई गई उनका इनकार, यहाँ पे कहा वो जालिम है जो जो लोग ऐसा करते हैं, उन्होंने हर बात का इनकार कर दिया। हम नहीं मानते कि उठाए जाएंगे, हम नहीं मानते कि एक कयामत ऐसी आएगी, हम नहीं मानते कि गली सड़ी हड्डियों से भी इंसान को दोबारा खड़ा कर, हम नहीं मानते, ये नहीं मानते, वो नहीं मानते, लेकिन हाँ कुफर को हम मानते हैं। तो ये जो बात कहना है ना कि अल्लाह ताला कैसे खड़ा करेगा, तो हदीसे कुदसी में आता है अल्लाह ताला फरमाता है इब्ने आदम मेरी तकजीब करता है, और उसको ये जेब नहीं देता कि वो मेरी तकजीब करे। और उसकी तकजीब करना क्या है, झुटलाना क्या है अल्लाह ताला को कि वो कहता है कि वो कैसे जिंदा करेगा। जब एक दफा इंसान को मौत आ जाएगी कैसे जिंदा करेगा, ये है अल्लाह को झुटलाना। ठीक है, तो ये मामूली बात नहीं है। قل لو أنتم تملكون خزائن رحمتي ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق، कह दीजिए अगर तुम होते मालिक खजानों के, अपने रब की रहमत के खजानों के तुम मालिक होते ना, तो क्या करते, तब रोक लेते तुम खर्च हो जाने के डर से। तुम इस डर से कि कहीं खत्म ना हो जाए, कहीं खर्च ना हो जाए, कहीं सारा ही ना खत्म हो जाए, तुम रोक लेते। बास तफसीरों में यह है कि रहमत रब्बी से मतलब यह है कि ये कुरान अगर तुम्हारे पास होता, यहूद को कहा जा रहा है, अगर तुम्हारे पास होता तो तुम इसको ना इस तरह से बयान करते और इसमें बुखल करते बयान करने में, और इसको अपने पास रोके रखते। और दूसरा जो माना हमें ज्यादा समझ आता है वो ये है कि अगर अल्लाह ताला की नेमतें, जो उसकी रहमत है, जैसे बारिश है, रिस्क है, नबुवत तो खास ही नेमत है ना जो एक बंदे को मिली, लेकिन और भी जितनी नेमतें हैं, अगर अल्लाह ताला इनका मालिक इंसानों को बना देता ना, तो इंसानों का तो हाल ये है कि खर्च ही ना करते, किसी को देते ही ना, किसी को भी ना देते कि खत्म हो जाएगा मेरा। इसीलिए तो आप देखें ना कि आज अगर इंसान के हाथ में हो ना, और कई लोगों को कहते भी सुना है कि शुक्र है अल्लाह ने अपने हाथ में रिस्क रखा, इंसानों के हाथ में होता तो हमें दोने वाले भी ना देते। वाकई ऐसा है, लेकिन अल्लाह ताला कैसा है, उसका जर्फ देखें कि हर काफिर को भी दे रहा है, मोमिन को भी, फर्मा बरदार को भी, नाफरमान को भी, और कब से खिला रहा है, कब से पिला रहा है, कब से खर्च कर रहा है इंसानों के ऊपर, जब से इंसान पैदा होता है, जब से ये जमीन और आसमान बने हैं, तब से अल्लाह ताला खर्च करता ही जा रहा है, करता ही जा रहा है, करता ही जा रहा है। और उसको ये डर नहीं है कि मैं खर्च करूंगा खत्म हो जाएगा, मेरा काम हो जाएगा, फिर मैं क्या करूंगा, मेरे खजाने नहीं रहेंगे इतने। नहीं, उसके खजानों में कोई कमी नहीं आती। इंसान के पास करोड़पति भी है ना, वो भी देते हुए उसका दिल ऐसे होता है। आप देख लें कहीं डोनेशन देना हो कहीं का, वो भी हाय इल्ला माशाल्लाह कोई लोग होते हैं, लेकिन फिर भी उसको ये होता है एक दफा दे दिया, दो दफा दे, नहीं नहीं मेरा खुद भी कहीं कम ना हो जाए, कहीं खर्च करती रहूंगी, कहीं मेरा खत्म ही ना हो जाए। तो अल्लाह ताला ने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह तूने अपने हाथ में रखे, अगर इंसानों के हाथों में दे देता तो क्या हाल होता, कैसे इंसान तो खर्च करने में क्या है, वकान इंसानों का अधूरा, इंसान खर्च करने में तो बड़ा बखील है, नहीं देना चाहता, इसका हाथ ही नहीं खुलता। तो ये रहमत के खजाने अल्लाह ताला ने अपने हाथ में रखे, और अल्लाह ताला इंसानों का हाल बयान करता है कि उनकी बखीली का क्या हाल है, इनको दे दिया जाता तो ये इसका हक अदा ना करते, कि हक तो ये था ना कि आगे दें, आगे से आगे बांटे, ये ना अदा करते। तो ये भी अल्लाह की रहमत है, ये उसकी किताब कुरान। तो ये भी कहा गया कि अगर काफरों के हाथों में ये होती तो ये इसको कभी भी खर्च ना करते, आगे ही ना देते, इसका हक ना अदा करते। तो क्या हमने हक अदा कर दिया, ये अल्लाह की रहमत है ना, ये जो हमें मिली है, हमें अल्लाह ने इसका मालिक बनाया है, हमने क्या हक अदा किया है या इसको रोक के रखा हुआ। سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك تلاوة سنية
وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاء قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا